एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार, अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक ऐसे उपन्यास की दुनिया में उतरेंगे जो 20वीं सदी के अंग्रेजी साहित्य में एक मील का पत्थर माना जाता है, मैल्कम लॉरी का अंडर द वॉल्केनो, मतलब ज्वालामुखी के नीचे।
जी हाँ, वाकई एक बहुत ही गहरा और कह सकते हैं झकझोर देने वाला उपन्यास है ये।
और इसके लेखक मैल्कम लॉरी, उनकी अपनी कहानी भी कम नाटकीय नहीं थी, है ना?
बिल्कुल, 1909 से 1957 तक का उनका जीवन, शराबखोरी, डिप्रेशन, अंदरूनी संघर्ष, ये सब उनके लेखन में साफ झलकता है।
हाँ, कहते हैं उनकी रचनाएं अक्सर आत्मकथात्मक होती हैं। कैम्ब्रिज से पढ़े, समुद्री यात्राएं की, लेकिन जो पहचान उन्हें मिली वो इसी एक उपन्यास से मिली।
और इसे लिखने में उन्हें करीब एक दशक लग गया। सोचिए, 1947 में जाकर यह प्रकाशित हुआ। जुनून था एक तरह का।
बिल्कुल, और इसकी सेटिंग भी कितनी दिलचस्प है, 1938 का मेक्सिको।
जी, जब दुनिया पर फांसीवाद का खतरा मंडरा रहा था।
उपन्यास एक काल्पनिक शहर क्वाउनाहुआक में सेट है, जो असल में क्वेर्नावा का शहर पर आधारित है, जहां लोरी खुद रह रही थे अपनी पत्नी मार्जरी के साथ।
हाँ, उनके अपने अनुभव इस उपन्यास में गहरे उतरे हुए हैं।
तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस जटिल, प्रतीकात्मक से भरे उपन्यास की परतों को खोलें, इसकी कहानी समझें, किरदारों के दर्द को महसूस करें और देखें कि यह आज भी क्यों इतना प्रासंगिक है।
बिल्कुल, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि पूरी कहानी सिर्फ एक दिन में घटती है।
हाँ, 2 नवंबर 1938, मेक्सिको का मशहूर डे ऑफ द डेड।
जी, मृत्यु का दिन। और उसी एक दिन में हम पूर्व ब्रिटिश कौंसुल जेफरी फर्मिन के जीवन के आखिरी लगभग 12 घंटों के गवाह बनते हैं।
और वो जगह क्वाउनाहुआक, लोरी ने परिवेश को जैसे एक जिंदा किरदार बना दिया है।
एकदम,
दो विशाल ज्वालामुखी हैं, पोपोकटेपेथल और इक्स्टैसिहुआटल, उनकी छाया में बसा शहर।
ये सिर्फ बैकड्रॉप नहीं है, एक तरफ जन्नत सा माहौल और दूसरी तरफ वो गहरी खाई जिसे वो बरांका कहते हैं, वो खाई जैसे सिर्फ जमीन को नहीं आत्मा को भी बांटती है।
एक ऐसा स्वर्ग जो नर्क के बिल्कुल किनारे पर है, कमाल की कल्पना है।
और कहानी में मोड़ तब आता है जब जेफरी की पत्नी इवॉन कांस्टेबल, जिससे वो अलग हो चुका है, अचानक लौट आती है।
हाँ, एक उम्मीद के साथ, है ना, शायद कुछ बच जाए।
जी, एक बहुत ही धुंधली सी उम्मीद कि शायद वो जेफरी को शराब के इस अंतहीन गड्ढे से निकाल पाएगी, शायद उनके रिश्ते को एक आखिरी मौका मिलेगा।
और यहीं से उपन्यास का जो मुख्य संघर्ष है वो शुरू होता है।
बिल्कुल, एक तरफ जेफरी का रास्ता है जो सीधा आत्मविनाश की तरफ जा रहा है, उसकी शराब की लत,
और दूसरी तरफ इवान की कोशिशें, उसकी उम्मीद, उसका प्यार।
पर यह सिर्फ एक रिश्ते या शराब की कहानी नहीं है, इसका कैनवस कहीं ज्यादा बड़ा है।
हाँ, ये सवाल उठाता है कि क्या इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है या हालात उसे घसीट ले जाते हैं?
और क्या प्यार वाकई किसी को बचा सकता है, खासकर तब जब वो इंसान खुद ही बचना ना चाहे।
जेफरी का किरदार वो जैसे आज के इंसान की उलझन का प्रतीक है।
बिल्कुल, सब पता है, अपनी कमजोरियां जानता है, पर बदल नहीं पाता, पूरी तरह से पंगू।
चलिए किरदारों पर थोड़ी और बात करते हैं। जेफरी फर्मिन यानी कौंसूल, उपन्यास का केंद्र।
हाँ, जेफरी बहुत ही जटिल किरदार है, प्रतिभाशाली है, कैम्ब्रिज का पढ़ा लिखा, संवेदनशील, लेकिन शराब ने उसे जैसे अंदर से खा लिया है।
और जैसा आपने कहा, उसकी शराबखोरी सिर्फ एक आदत नहीं लगती, कुछ और है।
जी, एक गहरी आध्यात्मिक, शायद अस्तित्वगत बीमारी का लक्षण। वो जानता है कि वो गलत कर रहा है, पर वो रुक नहीं पाता। उसका जो तेज दिमाग है ना, वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है।
पाठक के मन में उसके लिए दया भी आती है और कभी कभी गुस्सा भी। बहुत अजीब रिश्ता बनता है उससे।
और फिर इवॉन वो उम्मीद की तरह आती है ना, लेकिन
लेकिन उसकी उम्मीद भी कितनी कमजोर है। वो जैसे खोए हुए स्वर्ग का प्रतीक है, एक बेहतर जिंदगी की संभावना।
वो कोशिश करती है सुलह की, पर धीरे धीरे उसे समझ आता है कि जेफरी शायद उस पॉइंट से बहुत आगे निकल चुका है जहां से वापसी हो सके।
वो खुद भी कोई साधारण किरदार नहीं है, उसका अपना अतीत है, अपनी तलाश है।
हाँ बिल्कुल, वो कोई संत नहीं है, ना ही सिर्फ एक पीड़ित, एक जटिल इंसान जिसकी किस्मत दुखद रूप से जेफरी से जुड़ गई है।
और तीसरा अहम किरदार है ह्यूग फॉर्मिन, जेफरी का सौतेला भाई।
ह्यूग, वो जेफरी से बिल्कुल अलग है। जेफरी जहां निष्क्रिय है, ह्यूग में एक युवा आदर्शवाद है,
पत्रकार है, दुनिया बदलना चाहता है, वामपंथी विचारधारा है उसकी, स्पेन के गृहयुद्ध जैसी चीजों से जुड़ाव महसूस करता है।
हाँ, लेकिन उसके इरादे नेक होते हुए भी वो अक्सर चीजों को और उलझा देता है, और इवॉन के प्रति उसका जो एक खिंचाव है वो भी तनाव पैदा करता है।
वो दिखाता है कि कैसे आदर्शवाद भी असल जिंदगी की कठोर सच्चाइयों से टकरा कर थोड़ा भोथरा हो जाता है।
और एक किरदार और है जिसका जिक्र जरूरी है, जैक्स लारुएल।
हाँ, फ्रांसीसी फिल्म निर्देशक, जेफरी का बचपन का दोस्त और इवॉन का पूर्व प्रेमी भी।
उपन्यास का पहला अध्याय उसी के नजरिए से है। मुख्य घटनाओं के एक साल बाद वो जैसे पीछे मुड़कर देख रहा है, उस त्रासदी को समझने की कोशिश कर रहा है।
वो एक तरह से पाठक का प्रतिनिधि है जो बाहर से ये सब देख रहा है।
बिल्कुल। तो ये तीन मुख्य लोग, जेफरी, इवॉन, ह्यूग, इनके बीच का जो जाल है, प्यार, अपराध बोध, वफादारी, विश्वासघात, यही उपन्यास की जान है।
चलिए अब देखते हैं कि उस एक दिन की कहानी कैसे आगे बढ़ती है। सुबह इवॉन आ जाती है
जी,
और मिलते ही तनाव साफ दिखता है। जेफरी सुबह से ही नशे में है।
वे कॉन्सुल के विला में है।
हाँ, उसका बगीचा।
हाँ, वो बगीचा बिल्कुल उपेक्षित है, सांप घूमते हैं उसमें,
जैसे उनके रिश्ते का ही आईना हो।
बिल्कुल खोया हुआ सुकून। इवॉन कहती है कि चलो यहां से चलते हैं, मैक्सिको छोड़ देते हैं, कहीं और नई शुरुआत करेंगे, पर जेफरी जैसे सुन ही नहीं रहा।
वो बगीचा एक प्रतीक की तरह है, शायद कभी वो उनके प्यार का प्रतीक रहा हो, एक छोटा सा स्वर्ग।
जी, और अब उजाड़, खतरनाक, और वहीं वो चेतावनी वाला बोर्ड भी लगा है।
लेगुस्ता इस्तेहारदीन के सुयो एविते के सुस इखोस लुदिस्त्रुयान।
क्या आपको ये बगीचा पसंद है जो आपका है? देखें कि आपके बच्चे इसे नष्ट ना करें।
ये सिर्फ बगीचे की बात नहीं है, है ना? ये जेफरी की पूरी जिंदगी पे टिप्पणी है।
हाँ, कि वो अपनी ही बनाई दुनिया को खुद ही तबाह कर रहा है अपने ही हाथों से।
इसके बाद वो तीनों पास के शहर टोमालिन के लिए बस पकड़ते हैं,
और ये बस का सफर भी उनके उलझे हुए रिश्तों का एक छोटा सा रूपक बन जाता है। रास्ते में एक बहुत ही विचलित करने वाली घटना होती है।
वो मरते हुए भारतीय वाली।
जी,
सड़क किनारे एक भारतीय दम तोड़ रहा होता है। ह्यूग मदद करना चाहता है पर लोग उसे रोक देते हैं। जेफरी तो नशे में है, कुछ कर नहीं पाता, और एक अमीर यात्री
उस मरते हुए आदमी के पैसे चुरा लेता है। कितनी भयानक बात है। हाँ, और वो उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। ये घटना बहुत शक्तिशाली है।
ये सिर्फ उस एक आदमी की मौत नहीं है, ये जैसे दुनिया की बेरुखी, इंसानियत की हार दिखाती है।
और कहीं ना कहीं ये जेफरी के अपने अंजाम का भी संकेत है, कि वो भी ऐसे ही पड़ा रह जाएगा और दुनिया चलती रहेगी। व्यक्तिगत दुख और सामाजिक पतन कैसे जुड़े हैं, ये यहाँ दिखता है।
टोमालिन पहुंचकर वो एक मेले में जाते हैं, फिएस्टा।
माहौल एकदम उन्मादी है, कार्निवल देसा।
ह्यूग थोड़ी देर के लिए हीरो बनता है, वो एक बैल की सवारी करता है। इवॉन भी शायद कुछ पल के लिए प्रभावित होती है,
पर जेफरी,
जेफरी इस भीड़ में भी एकदम अकेला है। उसका शक, उसका वहम बढ़ता जा रहा है। उसे लगता है फांसीवादी जासूस उसके पीछे पड़े हैं।
और फिर वो झूले वाली घटना, ला मकीना इन्फर्नाल।
हाँ, नारकीय मशीन। वो झूला उसे गोल गोल घुमाता है उस गहरी खाई बरांका के ठीक ऊपर। ये सिर्फ झूला नहीं है,
ये जैसे उसके आत्मविनाश का अंतहीन चक्कर है, और वो खाई साक्षात नरक का दरवाजा। वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, यहाँ से वापसी अब मुमकिन नहीं लगती।
इसके बाद तो जेफरी का पतन और तेज हो जाता है।
हाँ, मौसम भी बिगड़ता है, तूफान आने लगता है। नशे और शक में जेफरी इवॉन और ह्यूग पे इल्जाम लगाता है कि उनका चक्कर चल रहा है,
और उन्हें परियान शहर जाने वाली बस में बिठा देता है, कहता है मैं बाद में आऊंगा।
ये अलगाव घातक साबित होता है। बस में इवॉन को अचानक एहसास होता है, एक भयानक स्पष्टता के साथ, कि जेफरी अब हमेशा के लिए खो चुका है,
और वो उसे खोजने के लिए तूफान में बस से उतर जाती है।
यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या ये सब होना ही था, या ये जेफरी के अपने फैसले थे?
लोरी दिखाते हैं कि रास्ते थे, संकेत थे, बचने के मौके थे, पर जेफरी ने हर बार विनाश को ही चुना। उसका शक, उसका गुस्सा, सब उसे अंत की तरफ ले गए।
और अंत आता है आखिरी अध्याय में। जेफरी परियान के सबसे बदनाम कैंटीना में, फरोलेतो। वो खुद उसे दुनिया का तल कहता है, एक प्रतीकात्मक नरक।
वहां उसका सामना कुछ लोकल अधिकारियों से होता है।
जी।
जिनका कनेक्शन फाशीवादी ताकतों से है।
जी।
वो उसे गलती से जासूस समझ लेते हैं, और जेफरी नशे में उन्हें उकसाता है, शायद जानबूझकर मौत को गले लगाता है,
और वो उसे गोली मार देते हैं।
हाँ, और उसके शरीर को उसी बरांका में फेंक देते हैं। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। एक और भयानक मोड़ है।
जी।
लगभग उसी वक्त जंगल में भटकी हुई इवॉन उसी घोड़े से कुचली जाती है जिसे जेफरी ने मरने से ठीक पहले छोड़ा था। दोनों की मौतें एक अजीब भयानक सिंक में होती हैं।
और उपन्यास का अंत इतना ठंडा, इतना निर्मम है। अधिकारी जेफरी का पता उन लोगों की लिस्ट में जोड़ रहे हैं जिनकी संपत्ति जब्त होनी है, बस। जैसे उसका होना न होना अब कोई मायने ही नहीं रखता।
ये अंत इतना असरदार इसीलिए है क्योंकि ये व्यक्तिगत त्रासदी को एक बड़े क्रूर सिस्टम के हिस्से की तरह दिखाता है।
बिल्कुल। जेफरी की मौत सिर्फ शराब या निराशा से नहीं हुई, उसमें उस वक्त की जो राजनीतिक सड़न थी उसका भी हाथ था। लुएरी दिखाते हैं कि जेफरी का जो निजी नरक था वो बाहर की दुनिया में फैल रहे फासीवादी नरक का ही एक छोटा सा रूप था।
वाह, व्यक्तिगत तबाही और बाहरी दुनिया की तबाही का आईना, कमाल का अवलोकन है।
और लुएरी ये सब कहते कैसे हैं? उनकी शैली, वो चेतना प्रवाह तकनीक, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, खासकर जेफरी के विचारों को दिखाने के लिए।
हाँ, हम जैसे उसके दिमाग के अंदर चले जाते हैं, यादें, डर, कविताएं, नशे का धुंधलका, सब कुछ एक साथ। पढ़ना आसान नहीं है,
पर ये जेफरी की टूटी हुई मानसिकता को समझने का सबसे कारगर तरीका है।
भाषा भी कहीं बहुत काव्यात्मक, कहीं एकदम सपाट कठोर। स्पेनिश शब्दों का इस्तेमाल माहौल को और असली बनाता है।
और प्रतीकात्मकता तो जैसे हर पन्ने पर बिखरा पड़ा है। वो ज्वालामुखी, विनाश और शक्ति दोनों, बरंका, नरक, शून्यता, वो बगीचा, खोया हुआ स्वर्ग, वो नारके मशीन।
शेक्सपियर, कितने सारे साहित्यिक संकेत बुने हैं। ये उपन्यास अपने आप में एक पूरा साहित्यिक यूनिवर्स है।
उपन्यास में एक लाइन है, नो से पुएदे विवीर सिन अमार,
कोई प्रेम के बिना नहीं जी सकता। शायद उपन्यास का सार यही है।
हाँ, लेकिन विडंबना देखिए, जेफरी ये जानता है, शायद महसूस भी करता है, पर वो न प्रेम दे पाता है न ले पाता है। उसकी शराब, उसका ईगो, उसका डर, सब रास्ते में दीवार बन जाते हैं।
ये हमें एक और जरूरी थीम पर लाता है, कम्युनिकेशन की नाकामी, प्रेम की असफलता।
जी, पात्र एक दूसरे की परवाह करते हैं, शायद प्यार भी, लेकिन वो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। उनके बीच जैसे कोई अदृश्य दीवार है।
और जेफरी की शराब उस दीवार को और मजबूत कर देती है।
और अपराध बोध, जेफरी अपराध बोध से लदा हुआ है, शायद अपने अतीत की किसी बात को लेकर, शायद इवॉन के साथ अपने बर्ताव को लेकर, लेकिन ये गिल्ट उसे सुधार की तरफ नहीं ले जाता,
बल्कि और ज्यादा आत्मविनाश की तरफ धकेलता है।
तो अंत में ये उपन्यास हमें क्या सोचने पर मजबूर करता है? कैसा असर छोड़ता है ये? मेरे लिए तो ये बहुत दुखद है, एक प्रतिभा को यूं बर्बाद होते देखना।
हाँ, विनाशकारी भी है और अजीब तरह से सुंदर भी। जेफरी के कई काम आपको नागवार गुजरते हैं, फिर भी उसके लिए एक सहानुभूति सी बनी रहती है।
बिल्कुल।
एक अनिवार्य और व्यर्थ हानि का एहसास होता है। किसी को अपनी आंखों के सामने खुद को तबाह करते देखना बहुत निराशाजनक है।
और ये सवाल भी कि ये जो नशे की लत है, ये है क्या सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी, या कोई गहरी बीमारी, या जिम्मेदारियों से भागना? लोरी कोई आसान जवाब नहीं देते।
और ये भी कि प्यार की हद क्या है। इवॉन का प्यार भी जेफरी को नहीं रोक पाता, शायद इसलिए कि आखिर में इंसान को खुद ही
खुद को बचाना होता है। और चेतना, जेफरी इतना सचेत है, इतना बुद्धिमान, पर क्या यही चेतना उसके दुख को और गहरा नहीं कर देती?
हाँ, शायद कभी कभी कम जानना ज्यादा राहत देता है। लोरी की कलात्मकता अद्भुत है, पर कहानी हमें इंसान के मन के सबसे अंधेरे कोनों से मिलाती है। ये दिखाती है कि नरक शायद कोई जगह नहीं, वो एक मानसिक स्थिति भी हो सकती है जिसे इंसान खुद चुनता है।
तो कह सकते हैं कि उपन्यास हमें आत्मविनाश की भयावहता और इंसानी जुड़ाव की कमजोरी की याद दिलाता है।
और ये भी कि प्यार चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो शायद उस इंसान को नहीं बचा सकता जो खुद को बचाने की इच्छा ही छोड़ चुका हो।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए अकथेरा फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।